और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस रात्रि के अंदर देखो कितने शून्य जंगल के अंदर कितना अच्छा लगता है, बड़ी शांति। बस एक ही बात है, इस बात की कल्पना हो रही है कि अयोध्या के अंदर लोग बड़े दुखी हो रहे हैं, मेरे माता और पिता बड़े दुखी हो रहे हैं। उधर मेरे मन में जरूर विचार है, और अपने लिए तो भाई ये पहली रात बहुत अच्छी है, शांत रात्रि है। ओहो, हमारे गुणवान राजा किस प्रकार से आज दुख पा रहे हैं, और तो और उनको दुख तो होगा ही, आज भरत और शत्रुघ्न भी वहां नहीं है। मुझे अपनी माँ के विषय में बड़ा शोक हो रहा है, कौशल्या माँ पर क्या बीतेगी। अपि नांदौ भवे तामदौ रुन्दन्तौ तौ अभीक्ष्णशः, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं रो रो करके कौशल्या जी और दशरथ जी रो रो करके अंधे न हो जाए। आज यदि भरत जी होते तो उनको कम से कम आश्वासन देते। खैर, भरत आएगा, भरत को बुलाएंगे तो सही, भरत आएगा उनको आश्वासन दे देगा। भरत की दयालुता को तो मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूं। एक काम करो, त्वया कार्यम नरव्याघ्र माम अनुव्रजता कृतम अन्वेष्टव्या ही वेदव्या रक्षणार्थम सहायता। तुम एक काम करो कि रात्रि में हमको कहां रहना चाहिए वो जगह तुम तैयार कर दो, और आज पहली रात है तो अभी दशरथ जी महाराज भी शोक में है, कौशल्या भी शोक में है, और सारी अयोध्या शोक में, कोई भोजन नहीं कर रही है, अपने को भी यहां भोजन नहीं करना है, केवल जल पी करके रहना है। मुझे तो यही बात सबसे अच्छी लगती है। ऐसा कह करके सुमंत से भी कहा और लक्ष्मण जी से भी कहा, और सुमंत से साथ में ये भी कहा कि देखो सुमंत, पास में तुम घोड़ों को चराओ, सूर्य अस्ताचल की ओर चले गए, घोड़ों को खाने के लिए कुछ दे दो, संध्या का समय अब विश्राम करो, ये तमसा नदी का तट है, यहाँ पर आनंद के साथ में विश्राम करना चाहिए। राम जी महाराज, लक्ष्मण जी और सीता, ये सुमंत, ये सब एक तरफ हो गए, और उनके साथ में आने वाले जितने लोग थे वे अभी पीछे पीछे आ रहे थे, वो एक तरफ अलग रुक गए। अब तमसा नदी के किनारे एक तरफ गायों का बहुत बड़ा झुंड था, वो रात्रि में गायें बैठा करती थी, वो गायों के जो है रंभाने की आवाज सब सुन रहे थे, तो सबको बड़ा अच्छा लग रहा था। इधर सुमंत जी महाराज जाग रहे थे, लक्ष्मण जी महाराज जाग रहे थे, और राम और सीता जी ये दोनों सोए हुए थे। थोड़ी थोड़ी देर में राम और नहीं लक्ष्मण और सुमंत जी राम जी को देख रहे थे, उनको नींद आ रही है। वृक्ष मूलेषु संसक्तान पश्य लक्ष्मण सांप्रतम। थोड़ी देर के बाद राम जी उठे और उठने के बाद कहा कि देखो लक्ष्मण, सुनो सुमंत, ये सब के सब पूर्वासी यहां वृक्ष के नीचे आराम से सो रहे हैं, हमें तो विशेष नींद नहीं आई है, क्योंकि हमारे माता पिता बेचारे दुखी है, और ये परिवार के लोग सब आराम से सो रहे हैं। यदि ये लोग हमारे पीछे पीछे चलेंगे तो इनकी भावना के अनुसार मना तो इनको कर नहीं सकते, हम लोग रथ में चलने वाले, ये पैदल चलने वाले, पहली बात तो ये, दूसरी बात है यदि हमारे साथ सब आ जाएंगे बेचारे परिवार वाले सब दुखी हो जाएंगे, इसलिए अपने को एक काम करना चाहिए कि यहां से अपने को दूसरे स्थान पर रवाना हो जाना चाहिए, अभी रवाना हो जाना चाहिए। यावदेव तो संसुप्ता, जब तक ये सोए हुए हैं तब तक हमको रथ पर बैठ करके जाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने सुमन जी को सावधान किया, लक्ष्मण जी भी सावधान हो गए, सीता सहित ये तीनों चारों रथ में बैठ गए, और रथ में बैठ करके तमसा नदी के उस पार चले गए। उस पार जाने के बाद भगवान ने सुमन जी से कहा, सुमंत हम तो इधर हैं, तुम वापिस उस पार जाओ, उस पार जाकर के रथ को चारों तरफ घुमाओ, और इस ढंग से यहां घुमाओ कि वो रास्ता सब अयोध्या में ही जाके निकले। माने यूं घुमाते घुमाते यूं जाओ तो अयोध्या में निकले। एक लकीर ऐसी लगाओ यूं घुमाते 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 यूं अयोध्या में आ जाए। माने जिस किसी भी लकीर को देख करके ये पूर्ववासी पीछे पीछे आए तो उनको अयोध्या ही मिल जाए। ऐसा तुम जो है खूब चक्कर लगा करके रस्तों को भ्रमित कर दो और लोग अयोध्या पहुंच जाए। कहने से तो नहीं पहुंचेंगे। अयम युक्तो महाबाहो रथस्ते रथिनाम्बर है। इस प्रकार से सब प्रकार से सुमंत जी ने कर दिया। सुमंत जी के करने के बाद में फिर जो है सुमंत जी राम जी के पास में आ गए और राम जी के पास में आए और फिर जो है वो राम जी लक्ष्मण जी सब बैठ करके बहुत दूर आगे चले गए और आगे जा करके उन लोगों से अदृश्य हो गए। इधर भाई वे लोग जगे। जगने के बाद उनको इस बात का होश आया कि अरे हम तो रात भर सोते रहे। सोते रहने का तो यही फल होता है। राम जी कहाँ गए? दिगस्तु खलु निद्रामताम। ऐसी नींद को धिकार है कि जिसने राम जी को हमसे अलग कर दिया। देखो इनको नींद क्यों आई? अयोध्या में किसी को भी नींद नहीं आई। इनको नींद क्यों और क्यों आ गई कि इनके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। राम जी का वियोग इनमें था ही नहीं। ये तो सोच रहे थे कि राम जी तो हमारे साथ हैं, इसलिए इनको किस बात का वियोग। आराम से नींद आ गई। और दशरथ जी महाराज के वहां पर तो भाई किसी को भी नींद नहीं आई, सब जगे हुए। अब कहते हैं कि अरे ऐसी नींद का क्या लाभ जिसमें राम जी हमको छोड़कर चले जाए। ओहो, यदि हमने राम को नहीं देखा तो नींद को कोई मतलब नहीं है। अब राम कैसे मिले? राम को हम कैसे देखेंगे? वो तो हमारे हम लोगों को प्रजा पुत्र के समान मानते थे। रघुवंशियों में एक ऐसा राजा हम लोगों ने राम को देखा है। अभी राजा बने तो नहीं, लेकिन आशा हमारी इन्हीं में ही थी, इन्हीं को ही हम देखते। लेकिन क्या करें, यही हमको छोड़ के चले गए। अपन ऐसा करो कि यहाँ तमसा नदी के किनारे चिता बना लो और चिता में जिंदे जी जल जाओ। वापिस कौन जाए, क्यों जाए? संति सुष्काणी काष्ठानी सूखे सूखे लकड़े बहुत है यहाँ, इन लकड़ों को जलाओ और इसी के अंदर प्रवेश कर जाओ। किसी ने पूछा क्यों भाई, मरो क्यों? जियो जितने भगवान का भजन ही करो, अच्छा ही रहेगा। अरे मरने से क्या हो जाएगा? जियोगे तो भगवान का नाम लोगे, भगवान के लिए रोओगे, यही अच्छा है। तुम्हारे लिए तो भगवान का वियोग हो रहा है, राम का वियोग हो रहा है, वियोग में तुम जलोगे, ये अच्छा है। इस लकड़े के आग में जलने से क्या फायदा? लकड़े की आग में तो मुर्दा जलता है, जिंदा थोड़ी जलता है। जिंदा जलने से क्या लाभ होगा? तो कहा कि नहीं नहीं, हम जब वापिस जाएंगे अयोध्या में तो लोग हमसे पूछेंगे कि राम जी कहाँ है, सीता जी कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, क्या जवाब देंगे? तो हम लोग तो उनके पास में इसलिए आए थे कि जैसे तैसे इनको मना करके ले आएंगे। हमारे मन में भावना तो ये थी। और उल्टा इनकी जगह क्या होगा? उल्टा ये होगा कि ये लोग हमसे पूछे, लो तुम तो गए थे मनाने के लिए, क्या हुआ तुम्हारा? तो भाई उसमें तो हमको बहुत बुरी बात लगेगी। और उस अयोध्या में जाया कैसे जाएगा? जो अयोध्या केकी के हाथ में चली गई, उस अयोध्या में जाने से फायदा क्या है? जब वो वीर यहाँ से चला गया, राम यहाँ से चला गया, राम से खाली हो गया, तो अयोध्या में जाने से क्या लाभ है? अरे हमसे तो ये मछली बड़ी अच्छी है कि जो तालाब सूख जाता है उस तालाब के अंदर दोबारा मछली नहीं जाती। सूखे हुए तालाब में कैसे जाएगी? जाएगी तो मर जाएगी। लेकिन हम ऐसे हैं कि जो अयोध्या जाने की सोच रहे हो, हम तो मछली से भी गए बीते निकले। इस प्रकार से वो बहुत से बातें करते हैं। किसी ने कहा कि अपने ऐसा करो कि राम जी जिस गए तो इन रथ में ही बैठ करके गए हैं ना, इस रथ के लकीर के पीछे पीछे चलो। हाँ हाँ, ये बड़ी अच्छी बात। एक दिन में, दो दिन में, दस दिन में कभी तो अपन राम जी को पहुंच जाकर मिल ही जाएंगे ना। रथ के पीछे पीछे, लकीरों के पीछे पीछे चलो। चलो अब वो सब रथ के पीछे पीछे चले, चलते चलते गए। अरे किमिदम, ये क्या हो गया? अयोध्या मगमन, हम तो सब अयोध्या में आ गए। अरे राम जी अयोध्या थोड़े ही आए होंगे, मार्ग भूल गए। अरे अरे दोबारा चलो अपने, तो दूसरे मार्ग से गए। दूसरे मार्ग से घूमते घूमते आए तो वही वो इधर आ गए। अब कोई बीकानेर एक तो यूं जावे, एक यूं जावे, फिर एक आगे जाकर के यूं जाए, किधर ही जाओ, जब यदि लकीरें इधर है तो वो बीकानेर आएगा ही, किधर से चले जाओ, यूं होकर के यूं चले जाओ, यूं होकर के यूं घुमा करके यूं ले जाओ, फिर यूं ले आओ। सब मार्गों से जाके देखा, अयोध्या आगमन सर्वे पूरे व्यथित सज्जना। तो भाई वहां पर अयोध्या में वे पहुंचे तो चारों तरफ से अयोध्या में पहुंचे, भाई अब अपने ठगे गए, अब जाने में आने में कोई लाभ नहीं। ओहो, इस अयोध्या में आए, जिस अयोध्या को छोड़ करके हम राम जी के साथ गए थे, घूम फिर करके हम ऐसे ही आए हैं। तो भाई अपश्यन निहितानंदम नगरम ते विचेत सैभुक, सब के सब बेहोश से हो गए। और देखो आकाश के अंदर चंद्रमा नहीं होता है तो आकाश की कैसी शोभा होती है, वैसे ही राम के बिना आज अयोध्या की शोभा हो रही है। वे अपने अपने घरों में तो गए, लेकिन घरों में गए तो वो बहुत दुखी हो गए, घरों में गए तो मुंह लटका लटका के बैठ गए। उनकी स्त्रियों ने पूछा, राम जी कहाँ है, आप तो राम जी को लेने गए थे, क्या बात हुई। रामम नगरवासी नाम, सब नगरवासियों की बात यही थी कि राम कहाँ है, राम कहाँ है। तो अश्रुणी पूछो, एक तो वो रोने लग गए, रोने लग गए तो देखा ज्यादा पूछेंगे तो रोएंगे। तो उन स्त्रियों ने देखा कि अरे बेचारे एक एक को क्या कहे, यहाँ सारी अयोध्या की यही दशा है, किसी के चेहरे पर हर्ष नहीं, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं। घोड़ों को देख लो, हाथियों को देख लो, और पशुओं को देख लो, पक्षियों को देख लो, मड़ियों को देख लो, कोई दुकान नहीं खोलता है और कोई सड़क पर चलता भी नहीं है, किसी के मन में कोई किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं है। अरे भाई पुत्रम प्रथमम प्रथमजम लब्ध्वा जननी नाभ्य नंदत है, पहला लड़का यदि किसी के होता है उस परिवार में तो बड़ा उल्लास होता है ना, कि भाई खूब उल्लास है। लेकिन ऐसा उल्लास भी किसी के घर में नहीं देखा गया, लड़के जन्मे लेकिन उल्लास नहीं है, क्योंकि लड़के जन्मने का सुख तो है थोड़ा और राम का वियोग हो गया बहुत ज्यादा। वो देखते हैं कि हमें धन से क्या मतलब, हमको लड़कों से क्या मतलब, हमको और अनुकूलताओं से क्या मतलब, हमें सुखों से क्या मतलब, हमें तो राम से मतलब था, राम तो यह है नहीं। इस अयोध्या के अंदर एक ही अच्छी नारी है और एक ही अच्छा पुरुष है। अच्छी नारी कौन? सीता। और अच्छा पुरुष कौन? के लक्ष्मण। ये दो ही ऐसे हैं जिन्होंने अपना बड़ा विचित्र चरित्र करके हम लोगों को शिक्षा दी है कि राम का प्रेम कैसा होता है। इसी अयोध्या में लक्ष्मण रहता था और यहाँ के महलों में रहता था, यहाँ उसके माता पिता रहते हैं, यहाँ उसका परिवार रहता है। धन्य हो लक्ष्मण, तुम्हारा राम के अंदर प्रेम हुआ तो राम में ऐसा हुआ कि सब कुछ छोड़ दिया लेकिन राम को तुमने नहीं छोड़ा, तुमने एक अयोध्या का नाम उज्जवल कर दिया। और देखो वे नदियां बड़ी श्रेष्ठ है जहां जाकर राम हाथ धोएंगे, वे नदियां बड़ी श्रेष्ठ जिनका जल राम पिएंगे, वे जंगल बड़े श्रेष्ठ होंगे जहां जाकर राम प्रेम से वहां पर विराजमान होंगे, वे वृक्ष बड़े अच्छे होंगे जिनके नीचे राम बैठेंगे, वो पर्वत बड़े श्रेष्ठ होंगे जिनके ऊपर राम विचरण करेंगे। ओहो ये वनवास कितना सुखद है, हम वन भी कोई सुखद होता है ये कभी कल्पना ही नहीं की थी, राम के वनवास हो जाने के बाद ये हमारे मन में कल्पना हुई कि वास्तव में वन भी एक बहुत अच्छी चीज है। जंगल के वृक्ष बड़े धन्य है जो अकाल के अंदर भी पुष्पित और फल और जो है पल्लवित होंगे, पुष्प लगेंगे, फल लगेंगे, पत्ते लगेंगे, राम का ऐसा प्रभाव होगा। वो झरने बड़े अच्छे होंगे जिन झरनों का जल राम जी पिएंगे, जहां राम रहेंगे वहां कोई पराभव नहीं है, वहां पर कोई भय नहीं है। सूरवीर राम के रहते हुए लोग कहते हैं जंगल में ये कष्ट है वो कष्ट है, कोई किसी प्रकार का कष्ट वहां आ नहीं सकता है, न भूत है न प्रेत है न पिशाच है न कोई जंगली जानवर है, राम के प्रभाव से वहां कोई कुछ नहीं होने वाला है। इस प्रकार से भाई वो पूर्वासिनी स्त्रियां विलाप कर रही है और वो दुखार्त होकर के बोलती है कि युष्माकं राघवो रण्ये योगक्षेमं विधास्यति सीता नारी जनस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति। राम तो वन में रहते हुए पुरुषों का भला करेंगे और सीता है वो स्त्रियों का भला करेंगे। बताओ ऐसा जो है कौन है कि जो राम का और सीता का और लक्ष्मण का कोई मुकाबला कर सके। कैकेय्याचेद राज्यम स्याद अधर्म्यम अनाथवत नहीं नो जीविते नाथ कुतः पुत्रै कुतो धनै। यदि कैकेयी के हाथ में ये राज्य होता है और कैकेयी का यदि यहाँ पर शासन चलता है तो फिर हमारे यहाँ जीने का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। कोई हमें पुत्रों से मतलब नहीं, धन से मतलब नहीं, यहाँ जीने से भी मतलब नहीं। अरे जिसने अपने पुत्र को वनवास कर दिया, जिसने अपने पति को कष्ट दिया है, ऐसे केकी के राज्य के अंदर हमें रहने से क्या मतलब है? हम भी केकी के राज्य के अंदर जिएंगे नहीं। और जीवन के पुत्र ही रपी सपा में है। और भाई क्या बताएं, हम तो अपने पुत्रों के लिए भी यही बात कहेंगे कि तुम भी भाई यहां मत रहो, बड़ा उपद्रव इस केकी ने किया है। केकी के कारण से हमारी बड़ी शांति की ये नगरी थी अयोध्या, बड़ा इसमें उपद्रव हो गया। हमें तो ऐसा लगता है कि राम के वनवास में चले जाने के बाद अब महाराज दशरथ जीवित रहने वाले नहीं है। हमें ऐसा भी लगता है कि ते भी आजान बाहु राम, लक्ष्मण का बड़ा भाई राम, प्रेम से बोलने वाला राम और हाथी की चाल से चलने वाला राम आज वन के अंदर बैठा है। फिर अयोध्या की रचना ही क्यों हुई, नगरी की नगर की रचना ही क्यों हुई? इन सब से कोई मतलब नहीं। अरे यदि ऐसा राम वन में जा सकता है तो फिर हम लोगों का यहाँ रहने का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार से वे स्त्रियां विलाप करती गई और सूर्य है वो अस्ताचल की और चला गया। रात्रि बढ़ती गई, रात्रि बढ़ती गई, जो जो रात बढ़ती जा रही है त्यों त्यों अयोध्या का हर्ष भी समाप्त होता चला जा रहा है। अरे दिन में तो कुछ लोग इधर उधर मिले तो सही, अब रात्रि में नींद तो आती नहीं है दुख के मारे, कष्ट के मारे, और कोई बात बतलाने वाला भी नहीं, अपने अंदर की गरम गरम श्वास लोग ले रहे हैं और दुखी होकर के रात्रि को, जो कि रात्रि अपने समय की है, ये रात इनको बहुत बड़ी लग रही है। उस समय में स्त्रियां अपने साथ में बेटे भी हैं, अपने पति भी हैं, अपने पास धन है, सब कुछ है, फिर भी उनको बड़ा वैराग्य हो रहा है कि संसार में कुछ नहीं रखा है। अरे भाई तुम्हारे पति है, जिस स्त्री का पति होता है उसके लिए सब संसार है कि नहीं, कुछ नहीं, राम के बिना क्या है? बेटे हैं, आज्ञाकारी पुत्र है और धन धान्य खूब है, लेकिन सबको बड़ा वैराग्य हो रहा है। अयोध्या के अंदर गीत उत्सव नाचना गाना सब शांत हो गया है। कहीं पर जाओ सब जगह एकदम नीरवता है, नीरवता। ऐसी वो अयोध्या हो गई है जिस प्रकार से कोई सागर सूख जाता हो। सागर सूखता नहीं है वैसे, लेकिन बताया कि यदि सागर का जल सूख जाए, विशाल सागर का, तो सागर कैसे दिखता, ऐसे अयोध्या दिख रही है। इधर भाई राम जी महाराज ने रात्रि व्यतीत की और रात्रि व्यतीत करके वे रवाना हुए। रास्ते में चलते तरह तरह के छोटे 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 गांव आते हैं। उन गांव के वे बेचारे भोले भाले आदमी, वो भोले भाले आदमी आकर के राम जी के सामने खड़े होते हैं, तरह तरह की बात करते हैं। वे आके बोलते हैं, देखो राम जी को सुना करके नहीं, आपस में बात करते हैं। अरे अयोध्या का राजा दशरथ हमने सुना था कि बड़ा बुद्धिमान है, वो तो महान बुद्धिहीन निकला, मूर्ख निकला, धिकार है दशरथ को। अरे एक स्त्री के कहने से इतनी बड़ी बदनामी मोल ले ली और उसने एक विनम्र शिष्ट सत्यवादी सर्वप्रिय राम को वह जो है अयोध्या से निकाल दिया। ऐसा कोई बाप होता है? ऐसी भी कोई माँ होती है कि जो पहले तो खूब उससे प्रेम करे और अकस्मात अपना मन बदल करके उसको महल से निकाल दे? क्योंकि बड़ी पापी है, इस जन्म में भी पाप किया, पूर्व जन्म में भी पाप किया, बड़ी क्रोध वाली है। केके ने तो सारा धर्म ही नष्ट कर दिया। देखो आदमी पहले किसी काम को करे सोचता तो है कि मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ, लेकिन केके ने बिल्कुल विचार नहीं किया। ऐसा देखो सांवला बेटा, प्यारा बेटा, अरे इसका तो देखते जाओ देखते जाओ, देखने में जी भर जाता है। ऐसे बेटे को इन्होंने वन में भेज दिया और वो दशरथ जी रहा है, केके जी रही है, अयोध्या के लोग जी रहे हैं। अरे कैसे जिया जाए। और ये सीता जब रवाना हुई तो कोई अयोध्या के अंदर ऐसा नहीं था जो ये कहता कि भाई सीता तुमको तो कोई वनवास मिला नहीं है, तुम स्त्री हो, तुम क्यों जा रही हो। किसने भी नहीं रोका। क्या अयोध्या बुद्धि हीनों से ही भरी हुई है, मूर्खों से ही भरी हुई है? ओ दशरथ के अंदर स्नेह नाम की कोई चीज नहीं है। जिसको जिस समय में सुख मिलना चाहिए उस समय में उसको दुख दे करके वो बात जी रहे हैं। प्रजानाम अनघम राम, हमने सुना है कि प्रजा तो राम को बिल्कुल किसी प्रकार से दोष वाली समझती नहीं है। ऐसे राम को सीधा ही कह दिया चलो वनवास में, वनवास में चले जाओ, ये तो बहुत बुरी बात है। राम कभी कभी तो भाई हमारे अनास्था होती है। ऐसा ये क्या है, धर्म कहाँ गया, सत्य कहाँ गया? क्या अपने स्वार्थ पूर्ति के अंदर ये लोग लगे हैं और ये अपने मन की बात पूरी कर लेते हैं? तो बताओ ऐसे आदमी यदि कष्ट पाते हैं तो फिर धर्म पने का अर्थ क्या हुआ? ऐसे ऐसे लोगों की भगवान बातें सुनते हैं। ये सब कौशल देश की बात है। अयोध्या नगरी के राज्य के बाद बहुत दूर तक कौशल देश था, कहते हैं कौशल देश की बात है। वहां तक के लोग इस प्रकार से बातें कह रहे थे। राम जी महाराज कोई का कोई उत्तर नहीं देते। फिर वेदश्रुति नाम की एक नदी आई, उस नदी को उन्होंने पार किया और उस नदी को पार करने के पश्चात फिर भगवान गोमती नदी आई, उस गोमती नदी को पार किया और गोमती नदी को पार करने के बाद फिर स्यंदिका नदी आई, स्यंदिका नदी को पार किया। तीनों नदियों को पार किया और पार करने के बाद में फिर जो है भगवान सुमंत जी से कई प्रकार की बातें करने लगे। कहने लगे सुमंत जी यहाँ तक तो हम लोग वैसे ही शिकार वगैरह खेलने के लिए आया करते थे और हमारे पूर्वज भी यहाँ इन भयंकर जंगलों में खूब घूमते थे, फिरते थे शिकार आदि करने के लिए। ये शिकार खेलना क्या था? सुमंत जी शिकार खेलते थे परिश्रम करने के लिए, शिकार खेलते थे हिंसक प्राणियों का नाश करने के लिए ताकि प्रजा में कष्ट न हो। बाकी जो है हर किसी प्राणी को नहीं मारते थे, हर किसी को अवैध आदि देते थे, मारते नहीं थे। हिंसक प्राणी होते उनको मारते थे जिनसे प्रजा को कष्ट होता है। यदि प्रजा वन में न आ सके, सिंह मार दे, हाथी खा जाए, उन हाथी को और सिंहों को ही मारते थे, हर किसी को नहीं मारते थे। अब विशाल कौशल देश के पास में राम जी महाराज पहुंचे और राम जी महाराज ने अयोध्या की ओर मुख करके कहा कि हे अयोध्या नगरी मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। हे अयोध्या नगरी तुम्हारे अंदर रहने वाले जितने देवता हैं उनको प्रणाम करता हूँ। हे अयोध्या नगरी वनवास से आने के बाद मैं अपने ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, तब तक के लिए मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूँ। हे अयोध्या मेरी माँ यही रहे, मेरे पिता यही रहे, मैं मेरी माँ और पिता के दर्शन तुम्हारे यहाँ करूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। इस प्रकार से भगवान श्री राम प्रार्थना करते हैं अयोध्या से और उसके बाद भगवान ने अपनी भुजा ऊंची की और ऊंचा करके और भगवान ने कहा अनुक्रोशोदया चैव। वहां रहने वाले लोगों को कहा कि देखिए आप लोग अयोध्या के अधीन रहने वाले पुरुष हो, आप लोगों से एक ही विनती है कि आप लोग दया रखना, प्रेम रखना और बहुत दिनों तक दूर रहने के कारण से मेरे पिता दशरथ कष्ट पाते हो उनको जाकर आप लोग सांत्वना देना। राम जी महाराज के पास में कई लोग आकर के कहने लगे कि हे राम हम अयोध्या से तो बहुत दूर रहने वाले गांव के आदमी हैं, हम आपके साथ चले तो कितना अच्छा रहे। राम जी ने कहा कि देखो आप लोग मेरे साथ चलोगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा और अयोध्या वासियों को भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इससे इससे लोगों में दो भाव पैदा हो गए कि एक तो वे है जो राम के साथ गए हैं और एक वे है जो राम के साथ नहीं गए हैं। ऐसे जाने वालों में और नहीं जाने वालों में भेद पड़ेगा, भेद पड़ना ठीक नहीं है। अचक्षुर विषयम प्रायः यथार्थ क्षणदा मुखे, इस प्रकार से राम जी ने सबको समझाया। समझाने के बाद राम जी आगे चले गए। बड़े आज बड़े विचित्र ये कौशल देश है, जहाँ जाओ वहाँ पर धन धान्य से भरे हुए खेत है, मकान है, यहाँ के लोग दानशील हैं, यहाँ के लोग यज्ञशील हैं, यहाँ के लोग सदा निर्भय रहने वाले हैं। बड़े बड़े बगीचे हैं जिसमें आम आदि के वृक्ष लगे हुए हैं और ऐसी नदियां हैं जिनमें हरदम जल भरा रहता है। लोगों का स्वाभाविक जीवन बड़ा प्रसन्न है और गौ समुदाय इनके पास में बहुत रहता है। राजा लोग इनकी बहुत अच्छे ढंग से रक्षा करते रहते हैं, ब्राह्मण लोग इनके घरों के अंदर यज्ञ कराते रहते हैं। इस ऐसे कौशल देश से भगवान आगे के लिए रवाना हुए। बड़ा सुंदर ये कौशल देश बताया कि जिस राज्य के अंदर कोई वस्तु की कभी कमी नहीं रहती है। आगे गंगा नदी को देखा, गंगा नदी को देखा कि बड़ा ये पवित्र जल है और बड़ा पवित्र इसका तट है। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बड़े पवित्र आश्रम है। गंगा नदी में अप्सराएं लोग आकर स्नान करती हैं। देवता है, दानव है, गंधर्व है, किन्नर है और दूसरे लोग हैं, विद्याधर है, चारण है, ये आ करके इसमें स्नान करते हैं। जलाघाताट्टहासो ग्राम, और गंगा नदी का जल जब बड़े वेग से पत्थरों से टकराता है उससे एक उच्च अट्टहास होता है, उससे बड़ा झाग पैदा होता है, सफेद झाग, उसको उसको देखने से बड़ा पुण्य होता है। मानो ये गंगा नदी की हंसी है, हंसी गंगा नदी का झाग क्या है, ये झाग एक तरह से गंगा की मधुर मुस्कान है। कहीं कहीं पर गंगा जी बहुत थोड़ी है, कहीं कहीं पर गंगा जी बड़ी गंभीर है, कहीं पर बड़ा तेज शब्द आता है, कहीं बाहर शब्द नहीं आता। वहाँ गंगा जी के पानी में कान लगाएं, पानी के पास, तब उनको शब्द की ध्वनि देती है, ऐसी गंगा है। राम जी इस गंगा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। हंस, सारस, चक्रवाक, ये पक्षी बड़ा अच्छा कूजन कर रहे हैं। तीर पर रहने वाले वृक्षमाला बड़ी शोभित हो रही है। यहाँ के वृक्षों के अंदर बड़े उत्तम उत्तम फल है, नाना प्रकार के पुष्प है, जिन पुष्पों के ऊपर कभी कभी मिट्टी आकर के बैठती है और फिर कभी हवा चलती है तो वो मिट्टी वापस उन पुष्पों से झड़ जाती है। ऐसे निर्मल पुष्पों के लिए वे वृक्ष है। और जो है बड़े बड़े हाथी लोग जंगलों से आते हैं और इस गंगा नदी में आकर के इसका जल पी करके यहाँ जोर जोर से नाद करते हैं। ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई आकाश से आई हुई प्रमदा हो, फल पुष्पों से विनम्र हुई हुई, भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई ये गंगा सबके पाप को धोने वाली है। गंगा के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बहुत बड़े बड़े सर्प हैं। इस प्रकार से गंगा सर्व जंतु सेवी है, सब जंतुओं को आश्रय देने वाली है। ये गंगा समुद्र की पत्नी है, सारस क्रौंच आदि का इसमें नाद होता रहता है। इस प्रकार से ये गंगा नदी यहाँ श्रृंगवेरपुर के पास में बहती है, यहाँ पास से ही श्रृंगवेरपुर दिखता है। अपने उच्च तरंगों के द्वारा ये श्रृंगवेरपुर को भी अपने अपने छांटों से कभी पवित्र कर देती है। श्रृंगवेरपुर देख करके सुमंत जी को राम जी ने कहा कि भाई अब यहाँ अपने विश्राम करते हैं। बड़ी नदी का अच्छा किनारा और बड़ी वेला हो गई, चलते चलते अब अपने को यहाँ विश्राम करना होगा। ये इंगुदी का वृक्ष है, इस इंगुदी वृक्ष के यहाँ पर तुम अपने सारथी, तुम अपने रथों को खड़ा कर दो सारथी, और यहाँ इसका पवित्र जल पिएंगे। लक्ष्मण और सुमंत्र ने कहा ठीक है महाराज। अब वहाँ एक सुंदर जगह देखी गई, सुंदर जगह पर अब वो उनके पास में गैती थी और उनके पास फावड़ा था। गैती से थोड़ी मिट्टी खोद करके ऊपर की मिट्टी को तो अलग किया फावड़े से और एक बहुत अच्छी जगह बनाई और यहाँ पर राम जी महाराज को विराजमान कर दे रहा है। तो वहाँ पर वे राम जी महाराज को अच्छी जगह पर विराजमान कर दिए। इधर अपने साथियों के साथ घूमता घूमता निषादों का स्वामी गुह उसका नाम था और वो निषाद राज था। निषाद राज गुह आया और राम जी के पास में आकर उनको प्रणाम करते हुए कहा दशरथ नंदन श्री राम को ये निषादों का सेवक आपका सेवक निषादों का स्वामी गुह प्रणाम करता है। राम जी ने कहा अच्छा आप तो निषाद राज स्थपति हो आइए आइए। राम जी महाराज ने बड़ा उनका प्रेम भाव से कुशल क्षेम पूछा क्यों निषाद राज बड़े बूढ़े मंत्रियों से सलाह लेकर के राज्य का काम देखते हो ना बड़े